Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, लोहे को नष्ट उसका खुद का ही जंग कर सकता है। उसी प्रकार इंसान की जो सकारात्मक सोच है वही उसे मदद करती है कोई भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप महसूस करेंगे कि आपके साथ सदा अच्छा ही होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो भाई।
नमस्कार
डॉक्टर साहब। हम एंजाइटी पर पूरी सीरीज हमारी चलती आ रही है। इसके अंदर में कई सारी बातें हमने सीखी कि किस तरह से कितने प्रकार की एंजाइटी होती है, कितने कॉज क्या है, मेन कॉज क्या है एंजाइटी का। साथ ही साथ हमने बहुत सारे रेमेडीज भी सीखे।
बिल्कुल।
अब मैं जानना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में, जैसे हमने पहले भी एपिसोड में कहा था कि स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे हम पूरी तरीके से एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं।
बिल्कुल।
और कोई ऐसे तरीके हैं, रेमेडीज हैं जो हमने मिस आउट कर दिया है?
एंजाइटी को ओवरकम करना हो तो और एक बहुत ही अच्छा तरीका है।
हाँ जी।
कि एक चार्ट को लिखो।
अच्छा।
ना, एक चार्ट है कि जिसको कहेंगे राइट थिंकिंग चार्ट।
ओके।
ना, ये चार्ट को लिखना है। चार्ट में पहले लिखे कि भी क्या घटना हुई ना कि जिसके कारण आपको एंजाइटी हुई।
करेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल कि इंटरव्यू था तो मुझे एंग्जाइटी हुई।
mm-hmm.
है ना, बॉस को मिलना था तो मुझे एंग्जाइटी हुई। mm-hmm. ऐसे क्या घटना हुई। फिर दूसरे कॉलम में लिखो कि मेरा नेगेटिव थॉट क्या था।
mm-hmm.
जैसे कि बॉस चिल्लाएगा तो।
बिल्कुल।
है ना, छोटे ग्रुप में लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे तो।
mm-hmm.
तो ऐसे नेगेटिव थॉट क्या था वह लिखो।
ओके।
फिर तीसरे कॉलम में लिखो कि पॉजिटिव क्या होना चाहिए।
ओके।
या तो ये भी लिख सकते हैं अगर वह घटित हो चुका है तो कि भी बॉस तो चिल्लाया नहीं, मैं इतना एंग्शियस था, उल्टा उन्होंने तो सपोर्ट दिया।
जी।
कि पांच लोगों के बीच में मैं बोला तो दो लोगों ने तो बहुत अच्छा कहा, तो ऐसे सचमुच अच्छा क्या हुआ।
जी।
या तो मुझे सोचना क्या चाहिए था। उस समय मुझे यह सोचना चाहिए था कि मैं कॉन्फिडेंटली बॉस के पास जाऊंगा, अच्छे से होमवर्क करके जाऊंगा, स्पीच देनी है मैं मिरर के सामने उस स्पीच को प्रैक्टिस करके जाऊंगा। कहते हैं कि भी चर्चिल बहुत अच्छे स्पीकर माने गए।
जी।
कि वो कोई भी इम्पोर्टेंट स्पीच पहले मिरर के सामने बोलते थे फिर लोगों के सामने बोलते थे।
अच्छा, तो इससे इतना बड़ा व्यक्ति,
वो प्रैक्टिस हो गई कि नहीं, होमवर्क हुआ।
ओके।
अच्छे, मतलब मेरा कहने का तो ये भाव है कि इतना बड़ा जो विश्व का सबसे अच्छे वक्ताओं में एक माना वाला व्यक्ति, वह भी प्रवचन करने के पहले मिरर में बोलता था। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी कहते कि वो अच्छे से तैयारी करते थे, भले उनकी स्पीच और कोई लिखते हैं लेकिन फिर वो खुद भी उसमें करेक्शंस करते थे।
ओके।
ना, फिर फाइनल करते थे ना, और फिर इम्पोर्टेंट स्पीच को बोलते थे। तो इतने अच्छे अच्छे लोग भी जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम भी कर सकते हैं,
क्यों नहीं। बिल्कुल।
हम भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए तो नेक्स्ट टाइम एंग्जाइटी नहीं होगी।
वैसे भी कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
वेरी गुड। और बात एक ये सोचते हैं कि एक्सट्रीम क्या होगा। समझो मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है।
जी।
तो मैंने जो तैयारी की है वैसा तो होना ही है, हो सकता है कि उससे अच्छा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, सीखने मिलेगा।
जी बिल्कुल।
वास्तव में वो सीखने मिलता है। अभी भी हम कटक में गए थी, एक कॉन्फ्रेंस थी, तो भी उनके फीडबैक देखे तो सीखने को मिला।
अच्छा।
कि लोग क्या बोल रहे हैं ना, कहां पर उनको और इम्प्रूवमेंट चाहिए।
बिल्कुल।
तो उससे हम और भी परफेक्ट बन सकते।
जी बिल्कुल।
तो ऐसे वो कॉलम में लिखिए कि जो मेरी तैयारी है वो तो होना ही है, एंजाइटी से 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं होना है।
उल्टा और डिटेरियोरेटिव
हो गया, इवन कई बार तो एक्सट्रीम होगा कि आपको ब्लैकआउट हो जाएगा।
सही बात है जी।
तो इसलिए जो भी मेरा प्रिपरेशन है, लेट मी गो कॉन्फिडेंटली और फिर वो रीअफर्म करो, उस बात को बार 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 रिपीट करो, तो इसके द्वारा भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है ना। ये प्रैक्टिस भी करिए, और तो बहुत सारी हमने डिस्कस की है, वो सारी टेक्निक भी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करनी चाहिए
जी। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि एंजाइटी लेवल इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे अंदर में, हमारी हार्ट बीट कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ रीज़न नहीं होता पर ये अजीब सा एक घबराहट जैसी होने लगती है, ऐसा क्यों होता है? क्या ये एंजाइटी का कोई पार्ट है या कुछ और ही है?
जैसे भी आप बोलते हैं वो करीब करीब एंग्जाइटी है।
अच्छा।
लेकिन ई भी अगर बहुत बढ़ जाए,
अच्छा,
इनको लगे अभी मेरी छाती फट जाएगी, कई लोग कहते हैं मुझे लगता है मेरा सर फट जाएगा, है ना, अभी मैं मर जाऊंगा
जी,
है ना, जब इतना एक्सट्रीम होता है तो उसको कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर। कि भाई वो थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी
जी,
कि जहां तुरंत से ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। ऐसे लोग अधिकतर तो उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है कि लगता है ये अटैक आ गया, उसको कुछ हो गया, तो तुरंत ही रिश्तेदार उसको हॉस्पिटलाइज कर देंगे। लेकिन एंग्जाइटी का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म है, सडन फॉर्म भी है।
करेक्ट।
कि अच्छा भला व्यक्ति है और अचानक उसको ये हो गया
जी,
तो मोर और लेस उसमें भी देखो तो एक तो इसे प्रिवेंट करना, जो हमने एंग्जाइटी के बारे में डिस्कशन किया है उन सब चीजों से, वो थेरेपी से उसे प्रिवेंट करना है कि वापस हो नहीं, उसका कॉज भी ढूंढना है, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़े तो भी दे सकते हैं। इसमें तो ऐसी भी दवाइयां हैं कि भी जिनको ये फ्रिक्वेंट होता है, कि आपने भी सुना होगा कि हार्ट के पेशेंट पॉकेट में रखते हैं सॉर्बिट्रेट।
अच्छा।
कि हाँ जैसे ही बगते जीभ के नीचे तुमको रखनी है तो रिजॉल्व हो जाएगा।
ओके।
तो ऐसे इसमें भी ऐसे डिजॉल्विंग मेडिसिन है कुछ, जिनको पैनिक अटैक आता है तो स्टार्ट हो तुरंत अगर वो मुंह में रख ले, है ना, तुरंत तो पिघल भी जाएगी, तो वो अटैक एक्सट्रीम पर नहीं जाएगा। और सबसे अच्छा तो है कि उसको प्रिवेंट करना है
जी,
कि पहले से हम देखें कि इस प्रकार की बात मेरे साथ होती है, और इस प्रकार के जो लोग हैं जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं उनको मैं कहूंगा कि एक तो अपने आप को पक्का कहो, मैं रिटर्न में गारंटी देता हूं कि मरेंगे नहीं, लेकिन ये पक्का होना चाहिए कि पैनिक अटैक है। एक बार अगर पक्का मालूम पड़ जाए कि भई यह और कुछ नहीं है, पैनिक अटैक ही है, तो ऐसा पेशेंट कभी नहीं मरता।
मतलब रियलाइजेशन अगर हो जाए कि ये पैनिक अटैक है तो उससे वो क्योर हो सकते हैं।
क्योर होना दूसरी बात है, यहाँ तो जो कहेंगे एश्योरेंस।
ओके, एश्योरेंस।
एज अ थेरेपिस्ट जो हमें एश्योरेंस देना होता है
जी,
कि अगर डायग्नोसिस परफेक्ट है कि भी हार्ट डिजीज नहीं है उससे, ये माइग्रेन का सीवियर अटैक नहीं है, ऐसा जब एक बार मालूम पड़ जाए तो फिर एश्योरेंस दे सकते हैं।
ओके।
है ना, ताकि उसे कुछ कुछ मदद, फिर भी उनको तो ये होता है कि मुझे होने वाला है। ऐसे जो पेशेंट है उनके हो सकते हैं कि 100 कार्डियोग्राम किए गए ना, डॉक्टर भी अच्छा डॉक्टर तो अंत में बोलता है कि मेरे पास कभी नहीं आना।
बिल्कुल।
आमतौर पर डॉक्टर चेक करेगा देखेगा, लेकिन वो 2-3 बार गया सेम चीज को लेकर के, और वो डॉक्टर अच्छे हैं तो बोलेंगे कि देखो मेरे पास आने से कोई फायदा नहीं, मैं भी तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं करने वाला हूँ, तुमको कुछ नहीं होने वाला है।
बिल्कुल। पैनिक अटैक की जब बात कर रहे हैं हम, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं या ये अपने आप में एक होलसम डिजीज है?
ये होलसम ही है,
होलसम डिजीज।
हाँ, कि भाई वो उसको जिसको कहेंगे कि सडनली कुछ हो जाने वाला है, सम रियल प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम।
ओके।
ना, तो उस प्रकार की उसको फीलिंग होती है।
क्या ये एंटीसिपेशन है कि हम
किसी एंटीसिपेटरी एंग्जायटी और चीज है?
अच्छा।
ये जो हमने बोला ना आगे जो डिस्कस किया,
हाँ जी,
वो एक प्रकार से उसको एंटीसिपेटरी स्ट्रेस भी कहा।
अच्छा।
एंटीसिपेटरी एंग्जायटी भी कहा।
ओके।
लेकिन पैनिक डिसऑर्डर सडन आता है और इतना सीवियर होता है कि तभी घर वाले तो डर जाएंगे, ऑफिस में भी कभी आ गया तो कलीग्स तो एकदम डर जाएंगे कि अभी इसको हार्ट अटैक आ जाएगा, तुरंत उसको ले जाएंगे हॉस्पिटल।
बिल्कुल।
बस और ट्रीटमेंट मोर और लेस सिमिलर है, उसका भी कॉज ढूंढना चाहिए कि भी इस प्रकार का इसको पैनिक अटैक क्यों आने लगा।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बात कुछ भी नहीं होती, लेकिन अंदर से ये जो फीलिंग आती है कि कुछ बुरा होने वाला है, वो इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि कई बार वही सेम चीज हो भी जाती है। अगर मैं एंटिसिपेशन में हूँ किसी चीज को लेकर के, और अगर वही चीज मेरे सामने घटित हो जाए, तो हम सोचने लगते हैं कि हमारा इंट्यूशन है, उसने मुझे बता दिया था। लेकिन ये एंजाइटी का एक रूप है या ये सिर्फ इंट्यूशन है?
नहीं नहीं, एंजाइटी का रूप है।
अच्छा,
एक प्रकार से देखो, जो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
हाँ जी,
जैसा आप बहुत सोचते हो उस चीज को अट्रैक्ट करते हो।
ओके,
तो वैसी बात है। लेकिन ये पेशेंट्स को ना हार्ट अटैक नहीं आता है।
अच्छा,
जिनको आता है उनको मालूम नहीं होता है।
जी बिल्कुल,
कई बार बैठे बैठे भी हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको पता ही नहीं है। नहीं, और पेन हुआ और सडनली जो इसके सिम्टम्स हुए, हार्ट अटैक आ गया।
करेक्ट।
जो पैनिक अटैक वाले हैं उनको हार्ट अटैक नहीं आता है, क्योंकि उनका हार्ट तो डॉक्टर भी कई बार चेक करेगा। ऐसे लोगों की कहीं एंजियोग्राफीज भी हो चुकी होती है।
जी,
डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा हार्ट तो 15 साल के बच्चे जैसा है, तुम क्यों डर रहे हो, है ना। फिर भी वो मानता नहीं,
फियर है उन्हें। हाँ, तो नहीं,
लेकिन फिर भी उनका अनकॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं करता है। कॉजेस भी मोर और लेस सिमिलर है।
जी डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में थोड़ा सा फोबिया के बारे में जाना था, अगर आप मुझे बता सकते हैं संक्षेप में कि किस तरह से फोबिया हमारे लिए हानिकारक है?
फोबिया सरल सी भाषा तो है कि डर।
जी,
और जो सबसे कॉमन फोबिया है वह है कि भीड़ में जाना।
अच्छा।
मार्केट प्लेस में जहाँ बहुत भीड़ होती है वहां जाना, या तो एक छोटे से कमरे में कहीं हम है, क्लोज्ड स्पेस है वहां, जिसको कहा एगोरोफोबिया।
ओके।
एगोरोफोबिया सबसे कॉमनेस्ट फोबिया है। ऐसे दूसरा फोबिया होता है ऊंचाई का फोबिया।
अच्छा।
कि 8-9 मंजिली इमारत पे ऊपर जाके व्यक्ति नीचे देखेगा भी नहीं, कि उसे एक्सट्रीम डर लगता है। ऐसे अनेक प्रकार के डिफरेंट फोबियाज हो सकते हैं।
ओके।
जैसे एनिमल्स का फोबिया है, और लिजर्ट का फोबिया बहुत कॉमन है। कि भी लिजर्ट को तो ऐसा करेंगे घर में टेप लगा के भी रखी होगी, विंडोज को ऐसे टेप लगा के रखा है, इतना कुछ कुछ करेंगे कि एक भी और हो तो उसको नींद में भी हो जाता है, लिजर्ट आ गई। हाँ, छिपकली आ गई,
छिपकली।
हाँ, तो वो एक्सट्रीम, वो भी काफी है। काफी लोगों में इस प्रकार का फोबिया होता है। एनिमल्स का फोबिया भी है, कोई व्यक्ति का भी हो सकता है।
जी।
मेरी एक पेशेंट है, उसको सांस का फोबिया है एक्सट्रीम, है ना। अभी तो खत्म भी हो गया, वी हैव रियली ट्रीटेड हर वेल।
सांस का फोबिया,
मतलब इतना एक्सट्रीम फोबिया कि एक बार ऐसा था, फॉर एग्जांपल कि भी दिल्ली स्टेशन है, कि भी उसकी सांस की गाड़ी दिल्ली स्टेशन से गुजरने वाली है, और किसी ने कहा कि तुम भी दिल्ली स्टेशन से, तो बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि उसकी ट्रेन वहां से गुजरने वाली है,
इतना फोबिया। हाँ,
और कभी भी समझो जरूरत भी, पति भी कहते थे कि चलो चलो प्लीज चलो, क्या है उसमें, है ना, सिर्फ माँ के पैर छू लेना, तो पैर छूने भी एक्सट्रीम होगा उसको डर। हालांकि भल उसने कभी एक आध बार कुछ बोला होगा, विच इज नॉर्मल।
जी
नहीं, तो लाइफ में होता ही है, कोई भी ऐसी सास नहीं मिलेगी जो हमेशा तुमको अच्छा ही बोलती रहे।
बिल्कुल। ना,
कभी एक आध बार उसने कुछ गलती बताई होगी, लेकिन नो फोबिया एक्सट्रीम उसके अंदर हो गया। मतलब कहने का भाव है कि भी ये फोबिया कुछ भी हो सकता है,
किसी भी चीज से हो सकता है,
और उसके पीछे कोई कारण है।
अच्छा।
अभी उसके पीछे के रीजंस है कि भी जिसके कारण व्यक्ति को फिर वो डर लगता है, और सिमिलर रीजन है कि भी एक बार एक्सपोजर हुआ, एक बार जैसे कि कोई कोस्ट क्लोज्ड स्पेस में फंस गया।
जी।
फिर उसको बाहर निकाला गया, और अगर वहां नहीं गया काफी दिनों तक, तो अनकॉन्शियसली वो चलता रहेगा और आगे चल के फिर जीवन भर भी उसको उसका डर लग सकता है।
बिल्कुल।
और भी किस पेरेंटल टीचिंग भी कॉज है, जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, जो एंजाइटी के कॉजेज है।
जी।
कॉजेज सिमिलर है, परंतु वो एक प्रेजेंटेशन है वो एंटायरली डिफरेंट हो सकता है।
तो फोबिया के जैसे आपने कहा बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसे हम लिस्ट भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा हैं। हाँ,
किस कोई भी जैसे ना, कई बार ऐसे हो सकता है, हमने भी पहली बार देखा।
हाँ जी।
कि व्यक्ति को इस प्रकार का फोबिया है, जिसे भी हमने सांस की बात, कि भी सांस से अनबन होना, सांस अच्छी नहीं लगे, वो कॉमन है, लेकिन इतना एक्सट्रीम फोबिया तो हमने कभी भी नहीं देखा।
जबकि जरूरी नहीं है कि उन्होंने इनके साथ इतना ज्यादा गलत किया हो।
ये सचमुच भी हो तो उन्हें, शी इज लॉन्ग टर्म पेशेंट, हमने डिटेल में सब कुछ सुना है।
ओके,
है ना, सास से भी बात की है, वो खुद भी कहती है कि इतना नहीं होता, लेकिन एक दो बार मुझे बोल दिया उसने।
डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि फोबिया अपने आप में आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, क्योंकि अभी आपने कहा कि बहुत सारी बारीक तरीके ऐसे ऐसे प्रकार के फोबियाज हैं जिसके बारे में हम लिस्ट भी नहीं कर सकते,
हाँ।
तो ऐसे में आइडेंटिफाई कैसे करें कि मुझे किसी चीज का फोबिया है और ये सिर्फ एक डर नहीं है, ये डिस्टिंग्विश कैसे करें?
अभी ऐसे तो सिंपल है
जी,
कि जब एक तो रैशनल फियर होता है कि भी कॉकरोच को देखा
जी
तो भी किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना, वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो जंप नहीं लगाएगा।
बिल्कुल,
अगर कोई कॉकरोच को देख करके जंप लगा रहा है तो डेफिनेटली उसको फोबिया है
जी।
ऐसी और कोई भी बात नहीं,
बिल्कुल,
कि यह चीज अच्छी नहीं है वो एक बात है, और जब हम एक्सट्रीम वहां जाएंगे नहीं तो फिर तो वो फोबिया का रूप हो गया।
ओके,
और कहते बड़े बड़े लोगों को था अलग अलग प्रकार का फोबिया, है ना, कईयों को पानी का सीरियस डर लगता है, कितना भी करो व्यक्ति कभी भी पानी में नहीं जाएगा, वहां कोई एक्सपीरियंस हो सकता है इस बर्थ का या पास्ट लाइफ का कोई एक्सपीरियंस, कि भी पानी में डूब के उसकी मौत हुई, तो अभी वो आत्मा इस जन्म में फिर एक्सट्रीम फियर में रहेगी, कितना भी आप कोशिश करो वो पानी में नहीं जाएगा।
करेक्ट डॉक्टर साहब, फोबिया को कम करने की कोई स्पेसिफिक टेक्निक भी होती है जिसके बारे में आज हमें जानकारी मिलेगी तो शायद हम धीरे धीरे उससे बाहर निकल पाएंगे?
बिल्कुल, जो एंग्जाइटी के लिए टेक्निक्स है वह सारी भी काम में आएगी, परंतु विशेष टेक्निक्स भी है
जी।
जैसे एक मेथड जिसको कहा डिसेंसिटाइजेशन,
ओके,
कि धीरे धीरे जिसका डर है उसका व्यक्ति सामना करे।
अच्छा,
इसके पीछे एक प्रयोग किया गया, मैंने पीछे भी डिस्कस किया है, फिर भी हमारे दर्शकों को इससे मदद मिलेगी
जी,
कि बिल्ली पर प्रयोग किए।
अच्छा,
कि कुछ बिल्लियों को छोटे छोटे शॉक दिए गए, और जब जब भी शॉक दिया तब उसको रेड लाइट भी दिखाई, जैसे शॉक दिया रेड लाइट दिखाई, तो ये दोनों चीजें लिंक हो गई।
ओके,
फिर कुछ समय के बाद शॉक नहीं दिए सिर्फ रेड लाइट दिखाई, तो भी जैसे शॉक लगा वैसे वो पैनिक अटैक हो गया उसको, है ना, फोबिया सा हो गया था
जी।
कहेंगे कि भी रेड लाइट का फोबिया।
ओके,
अब इस फोबिया को दूर करना था, है ना, वो पूरी वो एक्सपेरिमेंट की डिजाइन होती है कि अब बिल्ली को दिन में जब जब भी जरूरत होती थी दूध पीने के लिए देते थे, और जब वो दूध पीने का आनंद ले रही थी तब रेड लाइट को लाए, तो पहली बार तो उतना ही फोबिया हुआ, उतना ही रिएक्शन हुआ, लेकिन 0.1% भी कम हुआ क्योंकि वो दूध पीने का आनंद ले रही थी।
ओके,
ऐसा हर बार किया, जैसे 50 बार 60 बार किया तो देखा कि वह कम 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 होता गया, आखिरी पूरा खत्म हो गया।
वेरी नाइस।
कैसे हुआ है? एक तो क्योंकि वह दूध पीने का आनंद ले रही थी तो उसके कारण वह डर कम हुआ, और दूसरा जब बार बार हुआ तो उसे भी वह कन्विंस होता गया कि नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, शॉक नहीं लग रहा है, शॉक नहीं लग रहा है। तो ऐसे करते करते आखिरी पूरा समाप्त तो हो गया।
ओके,
तो जब ह्यूमन बींग में भी कहेंगे कि जो भी फोबिया है वह हमारे रेड लाइट एक्सपीरियंसेस है, कि सचमुच उसे डरना नहीं है परंतु हम डरते हैं।
बिल्कुल,
तो उसे अलग अलग लेवल पर ले जाते हैं, जैसे कि भी किसी को कॉकरोच का फोबिया है तो पहले तो उसको रिलैक्सेशन सिखाएंगे, फिर उसे विजुअलाइज करने के लिए कहेंगे पिक्चर क्रिएट करो कॉकरोच का, तो भी डर लगेगा, वो कर नहीं पाएगा। जब एक बार अच्छे से पिक्चर क्रिएट करने लगे फिर कोई पेपर में कॉकरोच का पिक्चर हो, है ना, पहले चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाओ,
ठीक है,
तो वो इजी है, उसमें भी थोड़ा डरेगा
जी,
लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक है, फिर कलर में दिखाओ तो भी डरेगा, फिर कम हो जाएगा, फिर आगे चल करके प्लास्टिक का कॉकरोच ले आओ, थोड़ा दूरी रखो, नजदीक नजदीक जाए पकड़ ले कॉकरोच को
जी,
है ना, तो उसमें भी सफलता मिली। आगे चल के फिर रियल कॉकरोच का भी उसका सामना हो, भी दूर है वहां से मैं देख रहा हूं, तो वैसे मैकेनिज्म क्रिएट होगी, और इसमें पहले व्यक्ति को रिलैक्सेशन कराना है। रिलैक्स होगा तो उसकी इफेक्ट अच्छी होगी
जी।
हम लोगों ने इसमें और एक चीज को ऐड किया है कि कि पहले से उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं, भी जल्दी से रिजल्ट मिले, उसको रिप्रोग्राम करेंगे कि देखो इसका कोई डर नहीं है, तुम फेस कर सकते हो, तुम्हारे में कैपेसिटी है, है ना। कोई भी अंदर में नेगेटिव बात चली गई है, ऐसे रिलैक्स करके एफर्मेशंस दो तो थोड़ा तैयार होता है और फिर वो अच्छी तरह से फेस कर पाता है।
करेक्ट।
तो यह जो टेक्निक है वो भी मदद करती है। बहुत पहले एक टेक्निक होती थी जिसको कहते थे फ्लोडिंग।
हाँ जी।
फ्लोडिंग मतलब कि फोबिया का जो उसका स्टिमुलस है वो पूरा उसको सामना कराओ। जैसे किसी को कॉकरोच का डर है तो एक छोटे कमरे में बहुत सारे कॉकरोच है वहां छोड़ दो व्यक्ति को, तो पहले तो रोएगा, चिल्लाएगा, जंप लगाएगा, लेकिन फिर आधे एक घंटे में शायद कॉकरोच को पकड़ के बाहर आएगा वो।
ऐसा तो भी हो सकता है?
होता है, पहले करते भी थे।
अच्छा।
रिजल्ट भी मिलते थे, लेकिन कुछ केसेस में एक्सट्रीम रिजल्ट्स हुए कि कहीं को हार्ट अटैक आ गया।
ओ, ओके।
क्योंकि उनको फेस करना था, तो इसलिए अभी वो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं।
ओके।
और ये जो डिसेंसिटाइजेशन है ये ट्रीटमेंट की जाती है।
ओके।
तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिकल मेथड्स है वो भी यूजफुल हो सकती है।
जी डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हम दिमाग में रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड करें, अगर पॉजिटिव एफर्मेशंस डालें, तो हम किसी भी तरह के फोबिया से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने क्या जाना? पैनिक अटैक, जिससे आज तक हम डरते आए, उसके भी कई सारे टेक्निक्स हमने जाने कि किस तरह से हम पैनिक अटैक से फाइट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने फोबियाज को भी जाना कि भले आपका कितना भी बड़ा फोबिया क्यों ना हो, लेकिन अगर आप रीप्रोग्राम करें अपने माइंड को, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दें, तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी कोई भी फोबिया से आप बाहर निकल पाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।